पृष्ठ 164। पात्र अथवा चरचित्रण महत्व। यदि उपन्यास का विषय मनुष्य है तो चरचित्रण उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में है। चरित्र के ही कारण हम एक मनुष्य को दूसरे से पृथक करते हैं। चरित्र द्वारा ही हम मनुष्य के आपे को प्रकाश में लाते हैं। चरित्र में मनुष्य का बाहरी आपा और भीतरी आपा दोनों ही आ जाते हैं। बाहरी आपे में मनुष्य का आकार प्रकार वेशभूषा आचार विचार रहन सहन चाल ढाल बातचीत के विशेष ढंग सखिया कलाम संबोधन आदि और कार्यकलाप भी आ जाता है। भीतरी आपा इन सब बातों से अनुमेय रहता है। पात्र के भीतरी आपे का चित्रण बाहरी आपे के चित्रण से अधिक कहीं अधिक कठिन होता है। उसकी बाहरी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता, उसके राग विराग, उसकी आकांक्षाएं, उसके अंधविश्वास, पक्षपात, मानसिक संघर्ष, दया करुणा उदारता आदि मानवीय गुणों अथवा निरसंशता क्रूरता अनुदारता आदि दुर्गुण सभी बातों का चित्रण रहता है। पात्र अपनी सबलताओं और दुर्बलताओं के साथ समाज में आता है। सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के गुण प्रकाश में आते हैं और उनका विकास भी होता है। व्यक्ति अपने निजी गुणों और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफलन होता है। चरित्र चित्रण की अच्छाई और बुराई चरित्र को जीता जागता बनाने, उसे विशेषता और व्यक्तित्व प्रदान करने तथा उसका उत्थान पतन दिखाने में है, उतनी नैतिक अच्छाई बुराई दिखाने या विवेचन करने में नहीं। बुरे पात्र के चरित्रण की अच्छाई उसकी बुराई के ही सफल उद्घाटन में है। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचू। उपन्यासकार जब एक बार पात्रों की सृष्टि कर लेता है तब वे अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुकूल ही काम करते हैं। फिर यदि वह उनको अपनी इच्छाओं के अनुकूल चलाना चाहे तो उनकी सजीवता में अंतर आ जाएगा। सजीव पात्र कठपुतली की भांति सूत्र संचालित नहीं हो सकते। चरित्रों के प्रकार। चरित्रों के विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार होते हैं। चरित्रों में एक मुख्य भेद तो सामान्य या वर्गत और व्यक्तित्व का है। जो पात्र अपनी जाति के प्रतिनिधि होते हैं वे टाइप या सामान्य वर्गत या प्रतिनिधि पात्र कहे जाएंगे। जैसे गोदान के राय साहब, वे अपनी जाति अर्थात जमींदारों के प्रतिनिधि हैं। प्रायः बड़े जमींदार ऐसे ही होते हैं। उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते हैं। व्यक्तित्व प्रधान पात्र वे होते हैं जो अपनी निजी विशेषता के लिए समाज में आते हैं। पृष्ठ 165। वे साधारण लोगों से कुछ विलक्षण होते हैं। जैनेन्द्र के हरि प्रसन्न या सुनीता, अज्ञेय जी का शेखर इसी प्रकार के पात्र हैं। वास्तव में न कोई पात्र नितांत सामान्य होता है और नितांत व्यक्तित्व प्रधान। किसी में सामान्य गुण अधिक होते हैं और किसी में विशेष गुण। व्यक्ति को जो गुण समाज से मिलते हैं वे उसके सामान्य गुण कहे जाते हैं और जो वह अपने साथ लाता है वे विशेष। सामान्य और विशेष गुणों के सफल सम्मिश्रण में ही चरित्र चित्रण की सफलता है। पात्र में न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि उसमें व्यक्तित्व ही न रहे और न इतनी विशेषता कि वह संकी बन जाए। यदि संकी पात्र का ही चित्रण करना हो तो दूसरी बात है, किंतु संकी पात्र एक ही हो सकता है। दुनिया में सब संकी नहीं होते। चरित्रों का दूसरा विभाजन स्थिर और गतिशील या परिवर्तनशील का है। स्थिर चरित्रों में बहुत कम परिवर्तन होता है और गतिशील चरित्रों में उत्थान और पतन अथवा पतन और उत्थान दोनों ही बातें होती हैं। सुनीता हरिप्रसन्न होरी ये सब स्थिर पात्र हैं। किंतु सेवा सदन के सुमन अथवा गबन के जालपा और उसका पति रामनाथ गतिशील हैं। इनका पतन भी होता है और उत्थान भी। चित्रण की विधियाँ। उपन्यासकार कई प्रकार से चरित्रण का कर सकता है। स्वयं अपनी ओर से पात्र का वर्णन करके अथवा पात्रों के भाषण या क्रियाकलाप द्वारा। इन सभी विधियों द्वारा हम पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ उपन्यासकार स्वयं चरित्र पर प्रकाश डालता है उस विधि को विश्लेषणात्मक कहते हैं, और जहाँ वह स्वयं नहीं करता है वरन पात्र द्वारा अथवा उसके वार्तालाप या क्रियाकलाप से कराया जाता है उसे नाटकीय या अभिनयात्मक या परोक्ष कहते हैं। नाटकों में चरित्रण दूसरे प्रकार का ही होता है, उनमें नाटककार का अस्तित्व प्रकाश में नहीं आता है, वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, वरन जो कुछ उसे कहना होता है वह पात्र द्वारा ही कहलाता है। कभी कभी पात्र अपने चरित्र का स्वयं भी विश्लेषण कर देते हैं, यह भी नाटकीय विधि कहलाएगी। आजकल नाटकीय विधि का ही अधिक प्रचलन है। इस प्रकार के चित्रण में पात्रों के चरित्र के समझने और मूल्यांकन करने में पाठक की स्वतंत्रता रहती है। नाटककार न तो सर्वज्ञ बनता है और न वह पाठकों पर अपना मत लादना चाहता है, उसके पात्र भी स्वतंत्र रहते हैं और पाठक भी। विश्लेषणात्मक पद्धति कभी कभी गुत्थियाँ सुलझाने में सहायक होती है, किंतु उसकी अतिशयता अच्छी नहीं। उपन्यासकार को बार बार बीच में आ जाने से एक तो कथा प्रवाह में बाधा पड़ती है और दूसरे पाठक भी कथा का आस्वाद स्वयं चरण करके नहीं ले पाते हैं। उनकी पाचन शक्ति इतनी दुर्बल नहीं होती है कि उनको पूर्व पाचित खाद्य मिले। जिस प्रकार मनुष्य अपने साथियों का परिचय रहन सहन से ही प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही उपन्यास जगत के पात्र पृष्ठ 166 काफी परिचय उनके क्रियाकलाप और वार्तालाप द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। चरित्रण में वार्तालाप के साधन को सावधानी से काम में लाना चाहिए। वार्तालाप और कार्य ऐसे ही होने चाहिए जिनमें चरित्र की कुंजी निहित हो। विश्लेषणात्मक विधि का उदाहरण, गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी मिस्टर खन्ना और मिर्जा खुर्शेद के चरित्र के संबंध में अपनी राय इस प्रकार जाहिर करते हैं। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले, दो बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खतर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे, जेल में शराब छुई तक नहीं और एक क्लास में रहकर सी की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजिमा थी। गोदान मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछताना था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे, काउंसिल में उससे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने आ जाते थे, नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े, न अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शौक था शायरी और शराब का। गोदान मिर्जा साहब के बाहरी आपे आकार प्रकार और रहन सहन का इस प्रकार वर्णन किया गया है। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरे देह, चांद के बाल, सफाचट, छकलिया अचनक और चूड़ीदार पैजामा पहनते थे, ऊपर से हैट लगा लेते थे, वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरह से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, दो बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। नाटकीय विधि का उदाहरण, इस प्रकार के चित्रण में दो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। पहले वे जिनमें की पात्र स्वयं अपने चरित्र का परिचय दे देता है, और दूसरे वे जिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय में अपना मत प्रकट कर उसका चरित्र चित्रण करते हैं। दोनों ही प्रकार के उदाहरण गोदान से यहाँ पर दिए जाते हैं। एक राय साहब अपने बारे में कहते हैं, मेरी ओर मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ। मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ, मुझ में जितनी बुद्धि जितना बल है वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। प्रश्न 167। मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को रोक न सका, जेल गया और लाखों रुपए की जेल भारी उठाई और अभी तक उसका सावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसू और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं? मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मुंह त्याग नहीं सका। गोदान। दो, मेहता जी के चरित्र का कुछ आभास हमको राय साहब और खन्ना जी के इस वार्तालाप से मिलता है। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता और करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊं? जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मैंने सुना है चरित्र का अच्छा नहीं है, बेफिक्री में अच्छा रहता, अच्छा रह ही कैसे सकता है? समाज में रहो और समाज के कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। गोदान। कथा वस्तु और पात्र। कथा वस्तु और पात्रों में किसी एक को महत्ता दी जाए या दोनों को एक दूसरे के ऊपर आश्रित रखा जाए, यह उपन्यासकार के लिए महत्व का प्रश्न है। कथा वस्तु का यदि पहले से निर्माण कर लिया जाता है तो उसमें पात्र स्वतंत्र नहीं रहते हैं, और यदि केवल पात्रों पर ही कथा का विकास छोड़ दिया जाता है तो उसमें संगठन और अनविति का अभाव हो जाता है। इसमें एक दार्शनिक प्रश्न भी लगा हुआ है, वह यह कि सृष्टि का विकास हम पूर्व निर्धारित मानते हैं अथवा स्वतंत्र? जो लोग कथा वस्तु को मुख्यता देते हैं वे उन लोगों की भांति हैं जो सृष्टि के विकास को पूर्व निर्धारित मानते हैं, और जो लोग पात्रों को महत्ता देते हैं वे उन लोगों की भांति हैं जो सृष्टि के व्यक्तियों में संकल्प की स्वतंत्रता मानते हैं। सृष्टि कर्म क्रम को पूर्व निर्धारित मानने से व्यक्ति अन्यथा करने में असमर्थ हो जाता है। पूर्व निर्धारित क्रम के अनुकूल कथा को चलाने में एक दोष यह भी आ जाता है कि कभी कभी पात्रों को अपनी प्रकृति के प्रतिकूल कार्य करने पड़ते हैं। अंग्रेजी लेखकों तथा हिंदी पृष्ठ 168 लेखकों ने भी उपन्यास के पात्र द्वारा उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया है। इस संबंध में डॉक्टर नगीन जी की विचार और अनुभूति नामक पुस्तक में वाणी के न्याय मंदिर शीर्षक वार्तालाप में और प्रेमाश्रम के एक पात्र ज्ञान शंकर द्वारा वीणा पुस्तक धारणी भगवती शारदा के न्याय मंदिर में प्रेमचंद के प्रति कई अभियोग लगवाए गए हैं, उनका कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत किया जाता है। उनका उद्देश्य यही रहा है कि स्वाभाविक या अस्वाभाविक रीति से मुझको नीचा दिखाया जाए। इसके लिए वे बार बार मेरे चरित्र की कालिमा को खूब गहरे रंग में लोगों के सम्मुख रखते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कह रहे हैं, इसलिए मेरे चरित्र चित्रण में विरोधी तत्वों का अस्वाभाविक मिश्रण है। विचार और अनुभूति। मेरा अंतिम और सबसे बड़ा अभियोग यह है कि उन्होंने मुझे बर्बर आत्महत्या के घृणित अभिशाप का भागी बनाया जो मेरे प्राणवान व्यक्तित्व के सर्वथा प्रतिकूल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति असीम अनुराग है, जीवन के उपभोग के लिए मेरे मन में सदैव अदम्य उत्साह रहा है। मैंने एक पुरुषार्थी की भांति जीवन की विषमताओं को पदाक्रम किया है। जीवन एक बार भी मैंने उनके सम्मुख मस्तक नहीं झुकाया, बस इसीलिए मेरे जन्मदाता ने मुझे जाकर गंगा में डुबो दिया, क्योंकि मैं उनकी इच्छा का दास नहीं बन सका। विचार और अनुभूति। ज्ञान शंकर की शिकायतों का सारांश यह है कि उनको प्रेमचंद जी की गांधीवादी नीति का शिकार बनना पड़ा है। प्रेमाश्रम के तथाकथित नायक प्रेम शंकर के व्यक्तित्व को जो गांधीवादी आदर्श त्याग और अहिंसा का निर्जीव प्रतीक मात्र है, ऊंचा दिखाने के लिए ज्ञान शंकर के व्यक्तित्व को काला कर दिया गया है। ज्ञान शंकर के अभियोगों द्वारा हमको चरित्र चित्रण संबंधी कई तथ्य मिलते हैं। उपन्यासकार को किसी पात्र विशेष के प्रति अनुचित मोह न दिखाना चाहिए, कम से कम इतना तो नहीं कि वह दूसरों के साथ अन्याय कर बैठे। वास्तव में कथा वस्तु को उपन्यासकार नहीं वरन पात्र बनाते हैं, पात्रों को उपन्यासकार जन्म देता है। उपन्यासकार कथा वस्तु द्वारा उन परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में आए। परिस्थितियां भी आसमान से नहीं उतरती, वरन वे भी पात्रों के क्रियाकलाप से उपस्थित होती हैं। अच्छे उपन्यास में कथानक की परिस्थितियां और पात्रों के व्यक्तित्व में आदान प्रदान रहता है, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकासशील पात्र परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं, स्थिर पात्र जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। उपन्यासकार को चाहिए कि पात्रों पृष्ठ 169 की प्रकृति के अनुकूल उनको अपनी निजी प्रेरणाओं के अनुसार चलने दें। उनके व्यक्तित्व को कथानक के पूर्व निर्दिष्ट फल के लिए नष्ट कर देना व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा। उनके चरित्र में जैसा कार्य विकसित हो सके उनसे वैसा ही काम लेना चाहिए। उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किंतु उसे इस बात को न भूलना चाहिए कि दुनिया में सब एक ही टाइप के लोग नहीं होते हैं। अन्य आवश्यक गुण, चरित्र चित्रण में संगति भी होना आवश्यक है। चरित्र को बिना कारण बदलना उचित नहीं है, उसका परिवर्तन उपन्यासकार की इच्छा पर न निर्भर रहकर परिस्थितियों पर निर्भर रहना वांछनीय है। चरित्र को स्वयं अपने से संगत रहना चाहिए और परिस्थितियों और घटनाओं से भी। गबन की घटनाएं रमा के चरित्र के ही फलस्वरूप उपस्थित हुई है। यद्यपि चरित्र जितना संकुल और पेचीदा होगा उतना ही उसमें संगति कम होगी, तथापि संगति के नियम की उपेक्षा नहीं की जा सकती और संगति में भी एक प्रकार की संगति रह सकती है। चरित्र चित्रण के गुणों में संगति के साथ सजीवता और स्वाभाविकता भी आवश्यक है। संगति इस सीमा तक न हो कि पात्र बिल्कुल मशीन बन जाए, उसके कार्यों की विविधता होना ही उसमें ऊब पैदा करने से सुरक्षित रखेगा, किंतु जो कार्य हो वे चरित्र और परिस्थितियों के अनुकूल हो, इसी को स्वाभाविकता कहते हैं। गोदान में मैदा का खान बनना कुछ अस्वाभाविकता है। यद्यपि खान का दृश्य बड़ा सजीव है, तथापि वह सजीवता उस पात्र के स्वभाव के कुछ विरुद्ध पड़ती है। फिर यह भी समझ में नहीं आता कि रोज साथ बैठने वाले आदमी की आवाज भी नहीं पहचानी गई। कथोपकथन आवश्यक गुण, कथोपकथन का संबंध कथा वस्तु तथा पात्र दोनों से ही है। वार्तालाप प्राय पात्रों के व्यक्तित्व के उद्घाटन और कथा क्रम के विकास के लिए होता है। वार्तालाप में भी चुनाव की आवश्यकता है। जो वार्तालाप कथानक को अग्रसर नहीं करता या चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता वह चाहे जितना सजीव हो उपयुक्त न होगा। कथोपकथन परिस्थिति और पात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। प्रेमचंद जी के उपन्यासों के कथोपकथन पात्र अनुकूल है, यहाँ तक कि यह गुण कहीं कहीं दोष भी हो गया है और इस पर बख्शी जी जैसे आलोचक ने आपत्ति भी उठाई है कि यदि कोई पात्र चीनी हो तो क्या मुंशी प्रेमचंद जी चीनी में बुलवाएंगे। वास्तव में भाषा का बदलना एक निश्चित सीमा से के भीतर होता है। भाषा के भीतर बोलने वालों के बौद्धिक विकास के अनुकूल भी कई श्रेणियां हो सकती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के पुलिस के पात्रों की उर्दू भी हिंदी का ही रूप है। कुछ स्थलों में वह अवश्य दुरूह पृष्ठ 170 हो गई है। इसके विपरीत प्रसाद जी के पात्रों की भाषा एक रस रहती है। कंकाल के सभी पात्र संस्कृत गर्भित भाषा बोलते हैं, वह उन पात्रों की भाषा नहीं है वरन प्रसाद जी की भाषा है। कथोपकथन की भाषा ही पात्रानुकूल नहीं होनी चाहिए वरन उसका विषय भी पात्रों के मानसिक धरातल के अनुरूप होना वांछनीय है। लेखक कभी कभी अपने निजी सिद्धांतों के उद्घाटन और गुण तथा विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मोह संवरण नहीं कर सकते हैं। उन सिद्धांतों के उद्घाटन के लिए वैसे ही पात्रों की सृष्टि होनी चाहिए। पात्र अनुकूल वैचित्र के साथ ही उसमें स्वाभाविकता, सार्थकता, सजीवता और लाघव संक्षिप्तता के गुण होना वांछनीय है। वातावरण आवश्यकता। कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों में वातावरण मुख्य है। कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भांति देश काल के बंधन में रहते हैं। यदि वे भगवान की भांति देश काल के बंधनों से परे हो तो वे भी हम लोगों के लिए अभेद रहस्य बन जाएंगे। इसलिए देश काल का भी वर्णन आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति के निर्माण में वातावरण का बहुत कुछ हाथ होता है। जिस प्रकार बिना अंगूठी के नगीना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना देश काल के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता है और घटनाक्रम के समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। आजकल बढ़ते हुए वस्तुवाद के समय में देश काल का महत्व और भी बढ़ गया है, लेकिन देश काल में वास्तविकता लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कलकत्ता की सड़कों का हम बिना कलकत्ता देखे वर्णन नहीं कर सकते। ऐतिहासिक उपन्यासों में देश काल का वर्णन विशेष रूप से आवश्यक होता है और प्राचीन काल को जैसा का तैसा अवतरित कर देना इतिहास और पुरातत्व के ज्ञान की अपेक्षा रखता है। श्री बिंदालाल वर्मा के गढ़कुंठार में बुंदेलखंड का चित्रण वहाँ के इतिहास से संबंधित होने के कारण पठनीय है। कुछ स्थान विशेष रूप से वीरता के उद्दीपक है तो कुछ भयानक के। घटनाओं के उपस्थित होने पर स्थल का विशेष महत्व रहता है। स्टीवेंसन ने लिखा है कि कुछ अंधकार में उपवन हत्या का आवाहन करते प्रतीत होते हैं। कुछ पुराने मकान भूत प्रेतों के अस्तित्व की मांग करते हैं और कुछ भयानक समुद्र तट जहाजों के टकराने के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं। कैंटेन डार्क गार्डनेस रिपीट Certain dark gardeners cry aloud for murder. Certain old houses demand to be hunted. Certain coasts are set apart for ship wicks. जो वस्तु जहाँ की उपज नहीं उसका वहाँ दिखाना अथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचलित न थी उसका उस काल में चित्रित करना भारतीय समीक्षा शास्त्र में क्रमशः देश और काल विरुद्ध पृष्ठ 171 दूषण माने गए हैं। आगरा की सड़कों पर देवदारू के वृक्षों को दिखाना अथवा शिमला में लू चलने या करियर की कुंजों का वर्णन करना देश विरुद्ध दूषण होगा और अकबर के समय में उनके किसी मुसाहिब को टाई संभालते हुए दिखाना काल विरुद्ध दूषण होगा। श्री किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने ऐतिहासिक ज्ञान की कमी दिखाते हुए लिखा है, गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं, जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास देश काल के चित्रण में सदा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कथानक के स्पष्टीकरण का साधन ही रहे, स्वयं साधन न बन जाए। जहाँ देश काल का वर्णन अनुपात से बढ़ जाता है वहाँ उससे जी उबने लगता है। लोग जल्दी जल्दी पन्ने पलटकर कथा सूत्र को ढूंढने लग जाते हैं। देश काल का वर्णन कथानक को स्पष्टता देने के लिए होना चाहिए, न कि उसकी गति में बाधा डालने के लिए। देश काल वातावरण का बाहरी रूप है। वातावरण मानसिक भी हो सकता है। आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वैसा ही काम करने लग जाता है। प्राकृतिक चित्रण भी उद्दीपन रूप से पात्रों को मानसिक या मूड को निश्चित करने में सहायक होते हैं। प्रकृति और पात्रों की मानसिक स्थिति का सामंजस्य पाठक पर अच्छा प्रभाव डालता है और उपन्यास में काव्यत्व भी ले आता है। जैसे किसी के मरते समय दीपक का बुझ जाना, सूर्य का अस्त हो जाना अथवा घड़ी का बंद हो जाना वातावरण में अनुकूलता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देता है। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद जी के निर्मला से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। जिस प्रकार अनुकूलता प्रभाव को बढ़ाती है, उसी प्रकार कभी कभी प्रतिकूलता भी प्रभाव को तीव्रता प्रदान करती है। जैसे इधर सूर्य का उदय हो रहा था, उधर उसकी जीवन प्रभाव विलीन हो रही थी, किंतु आजकल इन साधनों से कम काम लिया जाता है। उपन्यासकार अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण उपस्थित कर देता है, अपनी ओर से कुछ कहता नहीं। पृष्ठ 172, विचार और उद्देश्य। उपन्यास कहानी मात्र नहीं है, उसमें पात्रों के भाव और विचार भी रहते हैं। उपन्यास के पात्रों के विचार लेखक के ही विचारों की प्रतिध्वनि होते हैं। लेखक का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या करता है और उसी के अनुकूल उसके विचार होते हैं। उपन्यास के में बिखरे हुए विचारों में भी एक विशेष अनुभूति रहती है। विचारों के विभिन्न पक्ष दिखाए जाते हैं, किंतु उनमें मुख्यतः उन विचारों की ही होती है जो लेखक के दृष्टिकोण के अनुकूल होते हैं। कभी कभी लेखक का उद्देश्य जानना कठिन हो जाता है। विचारों में प्रायः लेखक और नायक का तादाद में होता है। यह बात नाटक और महाकाव्य में भी होती है। रामायण में जितने विचार आए हैं, वे सब तुलसीदास के सिर नहीं मढ़े जा सकते हैं। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, वे सब ताड़न के अधिकारी, यह समुद्र के दीनता में कहे हुए वचन है। गोस्वामी जी के सिद्धांत वचन नहीं है, किंतु रामचंद्र जी अथवा वशिष्ठ जी द्वारा कही हुई बातों के साथ हम गोस्वामी जी का तादात्म्य कर सकते हैं। उपन्यास के पात्रों के चरित्रण की भांति उद्देश्य निरूपण के भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक सीधा या विश्लेषणात्मक, जिसमें कि लेखक अपने दृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या स्वयं करता है, और दूसरा परोक्ष स्वव्यवधान या नाटकीय, जिसमें वह जीवन की व्याख्या करता है और दूसरा परोक्ष स्वव्यवधान या नाटकीय, जिसमें वह जीवन की झांकी मात्र ही देता है। उसके कुछ विचार तो पात्रों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और कुछ जीवन संबंधी घटनाओं के प्रस्थापन में तथा कथा के परिणाम में व्यक्ति व्यंजित रहते हैं। उपन्यास केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, वरन उसके द्वारा मनुष्य के जीवन विज्ञान के तथ्यों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। जीवन के ये तथ्य सूक्ति रूप में यत्र तत्र बिखरे रह सकते हैं। प्रेम केवल हृदयों को मिलता है, देह पर उसका कोई वश नहीं। प्रेमाश्रम अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। गबन कायरता भी वीरता की भांति संक्रामित होती है। कर्म भूमि निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है, ऐसी सूक्तियां मुंशी जी के सभी उपन्यासों में बिखरी है। गोदान में भी इस प्रकार की सूक्तियां प्राचुर्य के साथ मिलती हैं। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है, रूप अपमान नहीं सह सकता। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर। कभी कभी ये व्यक्त न होकर कथानक में व्यंजित ही रहते हैं। उपन्यास में ऐसे जीवन संबंधी तथ्यों का रहना नितांत अनिवार्य तो नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से उपन्यासकार किसी नीति का उद्घाटन कर मनुष्य का विश्लेषण मात्र करते हैं। इस विश्लेषण में नीतिकार के लिए सामग्री अवश्य रहती है, किंतु लोग प्रायः यह चाहते हैं कि उनको कुछ स्थायी विचार मिले। इन विचारों के प्रकाशन में उपन्यासकार को बड़े कौशल से काम लेना पड़ता है। कथाकार का पृष्ठ 173 पद त्याग कर उपन्यासकार जब स्वयं कुछ कह सकने में विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने लगता है और यह उपदेशक का पद ग्रहण कर लेता है, तभी वह आलोचना का विषय बन जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने प्रेमचंद जी के संबंध में यही आक्षेप किया है कि वे उपन्यासकार से उपदेशक बन जाते हैं। उपन्यास के कथानक के चौकटे में जड़ा हुआ निबंध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जाएगा, वह निबंध या व्याख्यान ही रहेगा। यद्यपि अब लोग उपन्यासों को विचारधारा के प्रकाशन का माध्यम बनाते जाते हैं, जैसे यशपाल, नरोत्तम नागर, अंचल, राहुल सांस्कृत्यायन आदि लेखक उपन्यासों द्वारा गांधीवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, तथापि उपन्यास में विचार और उपदेश एक सीमा के भीतर ही समाविष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार गीत काव्य में कथानक एक सीमा के भीतर ही रहता है, उसी प्रकार उपन्यास के कथानक में विचार और भाव की मात्रा एक मर्यादा के भीतर रहनी चाहिए। लोग इस सिद्धांत का अतिक्रमण करें तो उनका उत्तरदायित्व है। प्रसाद जी ने कंकाल में अपने पात्रों द्वारा गंभीर ऐतिहासिक समस्याओं पर विचार कराकर अपने इतिहास प्रेम का अवश्य परिचय दिया है, किंतु उन पात्रों पर भारी बोझ लद गया है। उपन्यासकार का काम थीसिस लिखना नहीं है, किंतु वह अपने विचारों के प्रवाह से बच भी नहीं सकता। इसमें उसको औचित्य और मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हम लोग उद्देश्य के साथ निरुद्देश्यता को भी महत्व देते हैं, किंतु तभी जब उसमें शैली का महत्व हो या बीच बीच में कुछ व्यंग्य हो। केवल कौतूहल की तृप्ति या मनोरंजन खोखलापन है। उद्देश्य के संबंध में मुंशी प्रेमचंद जी इस प्रकार लिखते हैं, हमारा विचार है कि क्यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार प्रधान रचना भी इतनी सुंदरता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निपटा रहे। कला कला के लिए कला का समय वह होता है जब देश संपन्न और सुखी हो। जब हम देखते हैं कि भांति भांति के राजनीतिक और सामाजिक बंधनों के से जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है उधर दुख और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं, विपत्ति का करुण क्रंदन सुनाई देता है, तो कैसे संभव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल उठे कुछ विचार। उपन्यासकार को इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार परोक्ष रूप में व्यंजित हो, जिससे कि उपन्यास की स्वाभाविकता में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। ऐसा न करने से उसका उपन्यास नीरस हो जाएगा। उपन्यासकार को जीवन मीमांसा करते हुए या नीति का प्रचार करते हुए यह न भूलना चाहिए कि वह कलाकार है और कला का उद्देश्य सौंदर्य की सृष्टि है। वह सत्य और शिवा का उपासक अवश्य है, किंतु उसकी उपासना सुंदर के रूप में करता है। धार्मिक या नीतिकार अप्रिय सत्य भी कह सकता है, किंतु कलाकार सदा सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात का ध्यान पृष्ठ 174 रखता है। कलाकार का उपदेश कांता का सा मधुर तथा प्रेम पूर्ण होता है। जो लोग यह कहते हैं कि उपन्यास में नीति की आवश्यकता नहीं, यदि हमको नीति की चाह है तो कोई नीति ग्रंथ ही क्यों ना पढ़े, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि नीति ग्रंथ में कोरी नीति रहती है और उपन्यास में काव्य ग्रंथों की भांति वह नीति रग के मधुरावेष्टन द्वारा शर्करा वेष्टित कुरीन की गोलियों की भांति ग्राह्य बन बना दी जाती है।